28. भव व्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाषण्डिनः ते भवन्तु सत् शास्त्र परिपन्थिनः भवव्रतधरा ये च ये चत्तान् समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः भवव्रतधरा ये च ये चत्तान् समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः भवव्रतधराये च ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः भवव्रतधराये च समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः भवव्रतधराये च ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भावस्तु भवव्रतधराये च ये च तान् समनुव्रताः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः सच्छास्त्रपरिपन्थिनः This class will be in Hindi. There'll be an English translation at the back. You can see Raghav is sitting there with the garland on. Sit next to him for your translation. Bhava Vrata Dharaha. Shiv ke anuyayi. Ye jo cha tata ye jo cha tata chan I say niyam samanuvrataha palan karte hue parshandinaha nastik te ve bhavantu hove sat shastra paripantinaha Divya Shastriya Karamon Se Vipat. Anuvad. Jo Shiv Ko Prasan Karne Ka Vrat Dharan Karte Hai Athava Jo Aise Niyamon Ka Palan Karte Hai Va Nischit Rup Se Nastik Hove Aur Divya Shastron Ki Virud Acharan karne wala bane tatparya kabhi kabhi ya dekha jata hai ki shiv ji ke bhakt shiv ke lakshanon ka anukaran karte hai udaharan arth shiv ji ne vishpan kiya tha kiye the aapka kya raha hai kiye the isme kiya tha like शिव हमारे भाई हैं हम सब गंजा इत्यादि लेने वाले और शिव हमारा भाई है जो शिव जो भीष्पान किया था अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण पर गंजा जैसे मादक द्रव्य का सेवन करते हैं इसलिए यहाँ यह शाप दिया गया है कि जो ऐसा करते हैं वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो यह कहा गया है कि शिव जी के ऐसे भक्त सात शास्त्र परिपंथन अर्थात शास्त्रों के निष्कर्मों निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे इसकी पुष्टि पद्म पुराण में भी हुई है श्री भगवान ने शिव को आदेश दिया कि वे विशेष उद्देश्य से निर्विशेष अथवा मायावाद दर्शन का उद्देश्य दे उपदेश दे जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे हो उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया था भगवान बुद्ध देव उपदेश दिया था कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है शिव पुराण में उल्लेख है कि शिव जी ने पार्वती से कहा कि वे काली युग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे इस प्रकार सामान्यतः यह पाया जाता कि शिव जी के उपासक मायावादी होते हैं भगवान शिव ने स्वयं कहा है मायावादम असत शास्त्रम जैसे कि बताया जा चुका है असत शास्त्र का अर्थ मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है भृगु मुनि ने शाप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद असत शास्त्र के अनुयायी हो जो यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि श्री भगवान निर्गुण है। इसके अतिरिक्त शिव के उपासकों का एक संप्रदाय अत्यंत राक्षसी जीवन व्यतीत करते हैं। श्रीमद् भागवतम तथा नारद पंचरात्र प्रमाणिक शास्त्र है, जो सात शास्त्र की कोटि में आते हैं, जिनसे ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होते हैं। असत शास्त्र इससे सर्वथा विपरीत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः परकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में सात शास्त्र परिपंथिनः इस शब्द अर्थ है। इसका अर्थ है कि जो अपराध किए थे भगवान शिव का नाम लेके, उसका फल होगा कि सब सात शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेंगे। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद शास्त्र से, सात शास्त्र से एक श्लोक देते हैं कि भगवान शिव ने कहा, मायावादम असत शास्त्रम प्रचन्नम भूदमुच्यते, मायाएव ब्राह्मणो क्या है, मायाएव ब्राह्मणो देवी खलो अभी तो याद नहीं, खलो ब्राह्मण रूपिणा, खलो ब्राह्मण रूपिणा कि हे देवी पार्वती, मैं ब्राह्मण के रूप धारण करके कलि युग में असत शास्त्र का प्रचार करूंगा, जो प्रचंड बोध दर्शन है। अर्थात बोध दर्शन है, लेकिन जैसे अलग दर्शन देखते हैं। एक्चुअली शंकराचार्य, शिव शंकराचार्य के रूप में आए थे। हम भी स्वीकार करते हैं कि शंकराचार्य ही शिव अवतार है, और शंकराचार्य के संप्रदाय में भी वे स्वीकार करते हैं कि वे शिव अवतार है। कुछ दिन के पहले रथ यात्रा का समय पुरी में था, और हम गोवर्धन मठ गए थे। गोवर्धन मठ का मतलब उसी प्रांत में वो आदि शंकराचार्य ने स्थापित आदि मठ, वहां पर तोरण पर लेके कि शिव अवतार आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ यही है, ऐसा लेके। तो बुद्ध धर्म भारत से हटाने के लिए, और कि वेद शास्त्र ही शास्त्र है, इस बात को स्थापन करने के लिए भगवान शिव शंकराचार्य के रूप में आए थे। और उन्होंने कहा कि ये बौद्ध दर्शन असत है, लेकिन वो दर्शन जो शंकराचार्य ने स्थापना किया वो ही बौद्ध धर्म जैसे है, लेकिन वेद का नाम है। बौद्ध दर्शन क्या है, शून्यवाद, सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं स्पर्श करते हैं वो सब
अनुभूति जो है तो उसका कोई सत्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो खाली कल्पना है। और कि सब कुछ तो कुछ भी नहीं, इस दर्शन स्थापन करने के लिए बोध शास्त्र है जिसमें बहुत तर्क से प्रयास करते हैं स्थापन करने की कुछ भी नहीं है। और कैसे सब कुछ शून्य है, तो इसमें बौद्ध धर्म में अलग अलग शाखा है जिनमें संघर्ष होते, विवाद होते हैं। तो एक शाखा, एक परंपरा बोलते तो सब कुछ ही शून्य है, इस प्रकार शून्य है। और दूसरा शाखा बोलते नहीं नहीं, सब कुछ शून्य ही है लेकिन अलग प्रकार से शून्य होते हैं। तो एक शब्द है ये सभी दर्शन के लिए, बकवास। तो लोग जो बोलते हैं सब कुछ शून्य है, तो जब फेत शून्य होते हैं तो नहीं बोलते हम शून्यवादी, फेत शून्य रहो। तो कुछ जब भूखी होते हैं तो कुछ खाते हैं नहीं, तो शून्य नहीं खाते, शून्य ही है वो अच्छा है, हम शून्यवादी है। यही दर्शन व्यवहारिक नहीं है। तो शंकराचार्य आए थे और बोले कि वो शून्यवाद ये सब बकवास है, और उसको खंडन किया। लेकिन कौन सा दर्शन स्थापन किया, वो मायावाद, कि सब कुछ जो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में सब कुछ काल्पनिक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सब कुछ मिथ्या है, वो ब्रह्म ही सत्य है। लेकिन ब्रह्म क्या है, उसमें कुछ गुण नहीं है, रूप शब्द स्पर्श कुछ भी नहीं, वो केवल, वो क्या शब्द है, केवल अभी केवलानंद अनुभूति, अभी तो याद नहीं है क्या बोलते है कि वो केवल आनंद है, सत केवल आनंद है, कुछ गुण रूप लीला कार्यकलाप कुछ भी नहीं है, तो केवल आनंद की अनुभूति होती है। तो कैसे आनंद होते हैं, तो और कौन वो आनंद को अनुभव करते हैं, तो केवल चेतना है, उसका कोई वर्णन नहीं, चेतना है, और कोई व्यक्ति नहीं है जो वो जो चैतन्य है, जिनकी चेतना है। तो फिर भी बोलते हैं तो सब ब्रह्म स्वरूप है, कोई ब्रह्म का कोई रूप नहीं है लेकिन ब्रह्म का स्वरूप है। आप सब समझते हैं जो मैं बोलता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि ये भी बकवास है। सुना बहुत दिन के पहले तो क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद श्रीमद श्री चैतन्य चरितामृत अनुवाद करके तो पहले आदि लीला का सप्तम अध्याय अनुवाद किया, पहला अध्याय नहीं, क्योंकि उसमें मायावाद का खंडन है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद पहले पूरे चैतन्य चरितामृत प्रकाशन के पहले वो एक अध्याय चैतन्य महाप्रभु इन फाइव फीचर, पंचतत्व का तत्व, वो एक अध्याय एक छोटी सी पुस्तिका में प्रकाशन किया। तो आप सब वो पढ़ लिया चैतन्य चरितामृत, उस अध्याय में वो दर्शन का विचार, वो दर्शन की चर्चा जो है बहुत कठिन है ना? आपका क्या राय है पंडित, आप भी पढ़े हैं ना? आदि लीला सप्तम अध्याय बहुत कठिन दर्शन है उसमें। तो ऐसे सुने कि श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद को बोले कि वो इस मायावाद दर्शन के बारे में पढ़ा लेकिन कुछ भी नहीं समझता। प्रभुपाद बोले वो अच्छा है, अगर समझता था तो बहुत विपति होती, क्योंकि वो उसमें कुछ नहीं है समझने के लिए, सभी बकवास है। तो यही असत शास्त्र है। तो शास्त्र के रूप में असत स्थापन करते, वो कैसे संभव है? शास्त्र क्या है? सात शास्त्र क्या है? ये श्रीमद् भागवत क्या है? धर्म कैतव प्रोजित अत्र, इस श्रीमद् भागवत में कैतव धर्म प्रोजित अर्थात पूरा क्या बोलते खंडित, प्रोजित नहीं हथाना, इस श्रीमद् भागवत से। और इस श्रीमद् भागवत का अर्थ है परमहंस जनों के लिए वास्तव दर्शन स्थापना, जिससे हम सभी प्रकार की माया मोह असत दर्शन से मुक्त हो सकते हैं और परम सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य को अच्छी तरह बिना शंका से एकदम अस्वस्थ होने से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सत शास्त्र का अर्थ है। और वास्तव में शास्त्र का मतलब सत। शास्त्र क्या है? वो शास्त्र भगवान का प्रदान है मोहित मानव समाज के लिए, मोहित जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए, जिससे वे अज्ञान थिमिरंध से मुक्त हो सकते और वास्तव शास्त्रीय प्रकाश मिल के दर्शन मिल सकते। दर्शन का मतलब क्या है? देखना। तो देखने के लिए अंक होना चाहिए और देखने का विषय होना चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए। तो ये शास्त्र क्या है? वो ही प्रकाश जिससे हम अच्छी तरह सब कुछ देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं है तो आंखों की शक्ति होने के पर हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो ऐसे हम अंधेरे में हैं, हम कुछ भी नहीं देखते, हम पश्यन्नापि न पश्यति, यही हमारी अवस्था है। हम सब कुछ देखते हैं। मैं अमिय विलास महाराज को देखता हूं, प्रभुपाद कविस स्थान के पास बैठ रहा है, मैं फर्श देखता हूं, छत देखता हूं, पक्षियों देखता हूं, लेकिन माया मोहित होने से हम कैसे देखते हैं? जगत दर्शन से। दो प्रकार का दर्शन है, एक जगत दर्शन है और दूसरा है गोलोक दर्शन। जगत दर्शन का मतलब हम सब कुछ देखते हैं लेकिन कैसे विचार करते? ईश्वर हम अहम भोगी, सब कुछ जो हम देखते हैं हम भ्रांत होने से समझते कि उस मैं नियंता हूं, सब कुछ मेरे नियंत्रण से मेरी इच्छा से चल रहे हैं और सब कुछ जो जगत में है वो मेरा भोग करने के लिए है। यही जगत दर्शन है, जिससे हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में अवसर मिलते हैं जगत को भोग करने के लिए। तो यही माया है। और गोलोक दर्शन क्या है? तो एक ही वस्तुओं को देखना लेकिन यही परिप्रेक्ष्य से, सद्विचार से कि सब कुछ भगवान की सृष्टि है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, मैं भी भगवान का दास हूं और इसलिए मेरा एक ही कर्तव्य है। तो सब कुछ जो जगत में है सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करना, यही गोलोक दर्शन है। तो दर्शन एक ही है, मतलब सब रूप आकृति जो हम आंखों से देखते हैं
तो शुद्ध भक्तों के लिए और माया मोहित जीवों के लिए तो एक ही दर्शन होते हैं, मतलब सब एक ही वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? एक माया मोहित जीवों जगत दर्शन से, मायिक दर्शन से देखते हैं, और शुद्ध भक्तों भगवत दर्शन या गोलोक दर्शन से देखते हैं। तो शास्त्र है वो प्रकाश जिससे हम अच्छी तरह सब कुछ देख पाएंगे कि सब कुछ भगवान की है, भगवान की संपत्ति। इदं हि विश्वं भगवान निवेतर, सब कुछ भगवान से अभिन्न है क्योंकि सब कुछ भगवान की सृष्टि है, सब कुछ भगवान की शक्तियां से सृष्ट होते हैं और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये सत दर्शन है। और देखने के लिए एक और भी उपाय है, एक और बहुत ही आवश्यक कार्य है कि अज्ञान थिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या बोलते हैं, मोती मोती है आंखों पर, और वो गुरु सदगुरु जो वैद्य जैसे ऑपरेशन करते हैं और मोती को कट के वो आवरण जो आंखों पर है उसको कट के और भगवत दर्शन प्रकाश देने से हमको समर्थ बनाते हैं भगवान को देखने के लिए। तो ये भगवत दर्शन है जो शास्त्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यही शास्त्र का अर्थ है, गुरु और शास्त्र के द्वारा दर्शन मिलते हैं। तो कैसे शास्त्र असत हो सकते? शास्त्र का मतलब भगवान का प्रधान जिसके द्वारा हम वास्तव ज्ञान मिल सकते। तो वास्तव में शास्त्र तो कभी भी असत नहीं होते, जैसे कि हम सदगुरु बोलते, लेकिन यदि गुरु सत नहीं है तो गुरु नहीं है। फिर भी हम बोलते सदगुरु क्यों बोलते? क्योंकि बहुत है जो गुरुगिरी करते हैं, वो गुरु जैसे अभिनय करते हैं लेकिन ऐसे भंड जो गुरुगिरी करते हैं, तो वास्तव गुरु नहीं है। तो उनका क्या उद्देश्य है? ज्ञानंजन देना नहीं, मायांजन और ज्यादा माया देना। तो उद्देश्य नहीं है शिष्यों को उद्धार करना। तो तथा कथित शिष्यों को और शोषण करना, तो एक ही उद्देश्य है। तो सभी लोगों इस भौतिक जगत में तो हर एक प्राणी सब दूसरे प्राणियों को प्रयास करते शोषण करना। और गुरु कौन है? वो सद व्यक्ति है, भगवान का दूत है जो गोलोक से आते हैं और उनकी भावना उद्देश्य और माया मोहित जीवों का उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत है। अन्यों का शोषण करने का कोई उद्देश्य नहीं है, अन्यों का उद्धार करने का उद्देश्य है। तो यदि कोई साधु गुरु पोषक पहन के दूसरों का शोषण करने का प्रयास करते हैं, वो असत है। लोग बोलते ये मेरा गुरु है, तो फिर भी वो असत है। तो इसलिए हम सदगुरु बोलते हैं। क्यों? तो यही स्थापन करने की, यही व्यक्ति तो सही गुरु है। और दूसरों जो गुरु, मैं गुरु हूं, मैं अवतार हूं, मैं साक्षात परम ब्रह्मा हूं, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा ऐसे बोलते हैं नहीं मायावादी, तो वे असत है।
तो असत व्यक्ति सद्गुरु का वेश में है, तो इसलिए बोलते सद्गुरु, तो गुरु ही साथ ही है। और इस प्रकार शास्त्र ही साथ है, शास्त्र तो कभी भी असत नहीं हो सकते। तो फिर भी इस शब्द आते हैं साधु अर्थात सत व्यक्ति शिव भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं असत शास्त्र का प्रचार करूंगा। तो शास्त्र का ऐसे असत है, तो असत नहीं है, लेकिन जो असत है तो जैसे सत, जो शास्त्र नहीं है तो जैसे शास्त्र वो उसको प्रचार करते हैं भगवान शिव। जैसे कि हम रूपानोग गौरी वैष्णव जन हम चैतन्य चरितामृत को मानते हैं, नहीं? ये मूल वेद शास्त्र नहीं है, वो ऋग साम यज्ञ अथर्व में नहीं है, पुराण शास्त्र में भी नहीं है, इतिहास रामायण महाभारत वो भी नहीं है। तो वो सभी प्राचीन शास्त्रों की श्रेणियों में नहीं आते, फिर भी हम मानते हैं कि वो ही सभी शास्त्रों का सारमर्म है। उसमें सभी शास्त्रों का उद्देश्य संकलित है और वो सभी शास्त्रों का क्या अर्थ है जो प्रकट नहीं है बहुत ही शास्त्रों में, वो प्रकट है व्यक्त है चैतन्य चरितामृत में। ये श्रीमद् भागवत यही उत्तम शास्त्र है, निगम कल्पतर गलितम फलम, यही वेद वेद कल्पतरु का पक्का फल है। तो फिर भी इस श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या है उसको समझना कठिन है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भागवत में व्यक्त नहीं है, सूक्ष्म ही है श्रीमद् भागवत में। वो मुख्य उद्देश्य क्या है? आराधित आराधित क्या श्लोक है? आराध आराधित नूनम भगवान ईश्वरो हरि ही, कि सबसे बड़ी उपासिका श्रीमती राधिका कृष्ण भगवान के श्रेष्ठ भक्त है। तो इसका स्पष्टीकरण है बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी की रचित ग्रंथ, जिसमें वो सब अनेक अनेक भक्तों का वर्णन है और सिद्धांत निष्कर्ष होते हैं कि श्रेष्ठ भक्त है श्रीमती राधिका। तो यही सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में भी है और सभी शास्त्र सिद्धांत चैतन्य चरितामृत में है और व्यवहारिक रूप में भी उपदेश शास्त्र के अनुसार। इसलिए हम मानते हैं चैतन्य चरितामृत है सर्वोत्तम श्रीमद् भागवत के साथ उत्तम शास्त्र, और जो श्रीमद् भागवत में व्यक्त नहीं है वो ही चैतन्य चरितामृत में है, तो हम मानते हैं। लेकिन दूसरे संप्रदाय में तो नहीं मानते, मध्व संप्रदाय तो नहीं मानते, श्री संप्रदाय में नहीं मानते, शंकर मायावाद संप्रदाय तो बिल्कुल नहीं मानते चैतन्य चरितामृत। तो उस प्रकार शंकर संप्रदाय में कुछ ग्रंथ है जो शंकराचार्य के अनुगामीगण मायावादी जन बहुत मानते हैं, विवेक चूड़ामणि जैसे, वो शास्त्र नहीं है, वो शंकराचार्य का मंतव्य है. शास्त्र, शास्त्रीय वाचन, शास्त्र वाक्य, वेद वाक्य लेके, और मायावादी जन मानते हैं कि यही सभी शास्त्रों का सार अर्थ है. जो शास्त्र में प्रकट नहीं है, विवेक चूड़ामणि इत्यादि ग्रंथों में है. तो यही एक्चुअली असत शास्त्र, क्योंकि वास्तव शास्त्र का अर्थ यही है, कृष्णस्थु भगवान स्वयं. वास्तव शास्त्र का अर्थ है कि ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही ईश्वर है, और सब जैसे चैतन्य चरितामृत में है, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य. तो यही वास्तव सिद्धांत है, और यही व्यवहारिक है. व्यवहारिक है माया मोहित से हम सोचते हैं कि ईश्वर हम अहम भोगी, परंतु वास्तव जीवन में हम क्या मिलते हैं? हम प्रयास करते हैं सब कुछ नियंत्रण करने और भोग करने, लेकिन हम कुछ भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और कुछ भी भोग नहीं कर सकते. और जितने भी प्रयास हम करते हैं सब कुछ भोगना, तो उससे उतना सा दुख मिलता है. तो यही सिद्धांत है शास्त्र का, कि कृष्ण ही भगवान है और सब उनके दास सेवक किंकर है. तो असत शास्त्र का प्रभाव से मायावादी जन यही विचार करते हैं कि मैं ईश्वर हूं. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरिक जन का विचार है कि ईश्वर हम. तो कैसे ईश्वर है? सब असुर की इच्छा है नंबर वन होना. मैं राष्ट्र में, देश में, इस लोक में, चाहे हिरण्यकशिपु जैसे जगत में श्रेष्ठ व्यक्ति में हूं. लेकिन मायावादी जन का प्रयास हिरण्यकशिपु से और भी ज्यादा आसुरिक है, क्योंकि उनका प्रयास है भगवान का पद पकड़ना. मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं केवल एक छोटा सा ब्रह्मांड का ईश्वर नहीं हूं. हिरण्यकशिपु का प्रयास था एक ब्रह्मांड के ईश्वर होना. तो मैं साक्षात परमेश्वर हूं, यही प्रयास होते हैं. और मायावादी जन इतना विमोहित होते हैं कि उनका विचार है कि संन्यास ग्रहण करके वे नारायण बन जाते हैं. दंड ग्राहे न मात्र न नरो नारायण भवेत, यही मायावाद. दंड ग्रहण करने से नर तो नारायण बन जाते. तो दंभ से वे सोच सकते कि मैं नारायण हूं, लेकिन वास्तव में उनका क्या गुण है नारायण होना? और ये भी सोचने है कि तो जीव कैसे नारायण परिपूर्ण सदैश्वर्य परिपूर्ण भगवान हो सकते? संभव है क्या? तो ऐसे वाराणसी में एक मायावादी सन्यासी दूसरा मायावादी सन्यासी रास्ते में मुलाकात करते, तो एक नारायण दूसरा नारायण को बोलते, नमो नारायण, कैसे हो आज नारायण? तो ठीक है, ठीक चलता हूं, लेकिन पीठ में दर्द है और मुझे डेंटिस्ट जाना पड़ेगा. तो किस प्रकार का नारायण है, किस प्रकार का ईश्वर? ईश्वर का दान में दर्द है, इसलिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। किस प्रकार का नारायण है? तो खाली कल्पना में नारायण है, लेकिन इतना भी मोहित होते तो साधारण व्यक्ति जानते हैं कि मैं नहीं जानते कि नारायण ही भगवान, लेकिन इतना मोहित नहीं है कि मायावादियों जैसे कि वे सोचते कि मैं ही नारायण हूं। तो ये आसात शास्त्र का प्रभाव है, और इस आसात शास्त्र का प्रभाव मिटाने के लिए और आसात शास्त्र का आसात सिद्धांत खंडन करने के लिए श्रील प्रभुपाद और सभी वैष्णव आचार्यों, श्रील प्रभुपाद विशेषकर, उनकी सभी रचित ग्रंथों में इस मायावाद का खंडन किए हैं। इस मायावाद का क्या स्रोत है? देखिए इस श्लोक में अपराध है मायावाद का। मायावाद मूल कारण क्या है? तो जो अपराधी थे तो शाप मिले कि तुम लोग सब पखंडी, शास्त्र के विरुद्ध होंगे। तो मायावाद में सच्चा श्रम और मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी सब अपराधी है। तो मायावाद का स्रोत है अपराध, और कारण और फल एक ही है। कारण है अपराध, फल क्या होते है? अपराध। और क्या होते है? मायावादी जो सोचते कि मैं भगवान, मैं नारायण हूं, तो प्रभुपाद बोले कि उस अपराध का फल से वे पत्थर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उनके हृदय इतना कठोर है कि भगवान को नहीं मानते, इसलिए पत्थर में प्रवेश करते हैं। या इतना सा बकवास बोलने से वे अगले जन्म में शयाव होंगे। तो ये तथाकथित नारायणों की गति है। शंकराचार्य की दया से उन्होंने कुछ सात शास्त्र भी बनाए। शंकराचार्य की जगन्नाथ अष्टक भी है, नहीं कृष्ण अष्टक, गोविंदम आदि नहीं और भज गोविंद, ये सब भी शंकराचार्य की रचना है। तो दयालु शिव भगवान तो पाषंडी लोगों को मायावाद विष खिलाने के साथ कृष्णामृत भी खिलाया, जिससे मायावादी जन इतने सा पतित नहीं होंगे। तो इसलिए हम आज तक देखते हैं कि मायावादी बहुत है, लेकिन फिर भी विष्णु सहस्रनाम, भज गोविंदम इत्यादि स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो ये विषय बहुत ही विस्तृत है। तो कैसे मायावाद असत है? वो मायावाद क्या है कि कुछ नहीं है इस भौतिक जगत में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और हम भी स्वीकार करते हैं मायावाद को। हम भी स्वीकारते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मायावाद में, और सब कुछ ही है भगवत दर्शन में। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ ही है, उनके चरण पर आत्मसमर्पण करना जीव की परम गति, परम सिद्धि है। लेकिन अगर हम विचार करते हैं कि जीव और शिव एक ही है, जीव और ईश्वर एक ही है, तो कैसे हम आत्मसमर्पण करेंगे? शायद भगवान के श्री मूर्ति के समक्ष आके हम भगवान को कहेंगे तो कि मैं इतने सारे दिन आके तुमको प्रणाम करते हूं, तो तुम आ जाओ नीचे और मेरे चरणों पर नमस्कार करो। यही मायावादी जन का दंभ है। तो क्या करना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का क्या करना चाहिए? अध्ययन करना और वितरण करना। हरे कृष्ण। तो आपका मूल्यवान समय और नहीं लूंगा, आप सभी जाइए और अध्ययन की वो ब्रह्मलीन होगा। ऊपर देख रहे हैं प्रश्न?
शंकराचार्य का जो मायावाद सिद्धांत है और
मायावाद अपसिद्धांत असत सिद्धांत
और बुद्ध ने
बुद्ध देव में,
तो उसमें क्या सिमिलरिटी क्या है?
सिमिलरिटी क्या है कि बुद्ध देव कहते हैं कि शून्य ही, तो क्या है शून्य उसको बोलना मुश्किल, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि यही शून्य है तो यही है ना, और अगर हम बोलते हैं कि वो सब कुछ जो हम देखते हैं वो सब कुछ काल्पनिक है, तो कैसे हम कल्पना करते हैं? तो हम भी है। तो बुद्ध देव का सिद्धांत है कि शून्य शून्य शून्यवाद, और मायावाद ब्रह्म सत्यम जगन नित्या, कुछ है लेकिन जो है तो यही सभी वस्तु नहीं है, जो है वो निर्गुण है। तो निर्गुण और शून्य में क्या अंतर है? अगर किसी भी चीज है, हम उसी चीज को कैसे लक्ष्य कर सकते, निरूपण कर सकते, क्योंकि उसके लक्षणों है नहीं? तो ये क्या है किताब? तो सब देखते नहीं, तो कैसे किताब है? क्योंकि ऐसे रूप है, बहुत पन्ना है, उसमें लेख है, तो ये सभी किताबों के लक्षण है ने? और ये क्या है? माला, पुष्प माला, तो उसका क्या लक्षण है? इसमें पुष्प है। तो सभी चीज हम ये सब हम देखते हैं, तो और भी क्या है? ओ बकरी है, तो यहां पर कोई बकरी नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो मन में वो बकरी का पिक्चर आते है ना? क्या है उसमें? चापायोंग दाढ़ी है, तो एक विशेष पशु है। तो सभी वस्तुओं का लक्षण है। तो यदि हम निर्गुण बोलते, निर्गुण अरूप, कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, अनाम कोई नाम नहीं है, तो वो शून्य जैसे है नहीं? तो अलग नाम से शंकराचार्य बौद्ध दर्शन प्रचार किए है। प्रचन्नम बौद्धम उच्यते, और क्या? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। Hare Krishna.